समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल भी रहेगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। और डेडलाइन में बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर। बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं विनय सक्सेना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नरेश मागो। नरेश जी नमस्कार।
नमस्कार विनय। गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, reports, capsules, tributes and much more. All this over the next 30 minutes. But first up is news headlines.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद का भी शपथ ग्रहण आज ही होगा।
SKM लीडर प्रेम सिंह रमांग टू टेक ओवर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम टुमारो।
ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण बुधवार को होगा।
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू ब्रिंग न्यू लॉ टू डील विद केसेस ऑफ पेपर लीक इन एग्जाम्स।
न्यूयॉर्क में 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से।
एंड इन टेनिस, कार्लोस अल्काराज ऑफ स्पेन टू क्लैश विद जर्मनीज अलेक्जेंडर ज़वरेव इन द मेंस सिंगल्स फाइनल ऑफ फ्रेंच ओपन एट रोलां गैरोस टुडे। And now, time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we will talk about the International Archives Day. International Archives Day is being observed across the country today to raise awareness among the public about the importance of records and archives. This day aims to keep the general public, private and public sectors, fully conscious of the need for long-term archival preservation and access. During the 2004 International Congress in Vienna, 2000, attending participants adopted a resolution requesting the United Nations to designate a specific day to mark the importance and value of archives. Later, in 2007, at the annual general meeting of International Council on Archives, it was decided that the 9th of June would be celebrated as International Archives Day.
Antarashtriya Puralekh Divas ka uddeshy अभिलेखों और पुरालेखों के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य सुशासन और विकास के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन के लाभों के बारे में अग्रणी निर्णय निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना है। इसका इरादा अभिलेखीय संस्थानों में संरक्षित अद्वितीय, असाधारण और दुर्लभ दस्तावेजों को प्रदर्शित करने का भी है और अभिलेखों और अभिलेखागारों की छवि को बेहतर बनाने और दुनियाभर में उनकी प्रोफाइल बढ़ाने के लिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस की थीम साइबर आर्काइव्स है। आज के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में अभिलेखागार एक ऐसे भविष्य को सुरक्षित करने में बहुआयामी भूमिका निभाते हैं जो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अभिलेखीय क्षेत्र न केवल डिजिटलीकरण को अपना रहा है बल्कि एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों द्वारा लाई गई चुनौतियों और अवसरों का भी समाधान कर रहा है। नरेश जी, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि इसको एक दिन दिया गया है प्रॉपर, और ये जिससे हमें ये पता चलता है कि पुराने लोगों ने कितनी मेहनत की थी हमें चीजों के बारे में बताने के लिए।
Right, Vinay, because, you know, usually the image that one conjures up about an archivist is that he or she would be a secluded individual, absorbed in detail, working in a quiet and dark basement surrounded by piles of old paper. But this is actually far from reality. Archivists are professionals who collect, organize, describe, and make accessible informational documents generated by a variety of public and private institutions. Their job is rarely static. On the contrary, a day in the life of an archivist can involve surprisingly physical tasks such as moving boxes or pallets of folders from one place to another when there are new transfers or transporting records for their disposal. Apart from paper documents, archivists deal with a wide range of material including digital files, photographs, microfilm, audiovisual media and of course the related metadata. They are also involved in outreach activities and engage in direct contact with the public by responding to their questions and requests for documents and also by organizing exhibitions and other events.
पुरालेख हमारे इतिहास राष्ट्रों और समाजों की स्मृति के गवाह हैं और पिछले कार्यों के साक्ष्य और स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। यादें धूमिल होने के बाद भी वो हमारे विरासत को संरक्षित करते हैं ताकि हम बेहतर ढंग से विश्लेषण कर सकें कि वर्तमान कार्य हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। उनके बिना इतिहास कोई वास्तविक समझ नहीं होगी और ये पहलू आजकल मीडिया और संचार चैनलों की बढ़ती संख्या के साथ बेहद प्रासंगिक हैं।
In this respect, Vinay, archives are vital concentrators of knowledge and play an essential role in critical thinking and democratic accountability by ensuring that the documentary heritage preserved today will enable future generations to understand their own pasts. In fact, Vinay, you'll be surprised that a few days ago I witnessed a collection of videos from the archives and where they showed how people used to fly way back in 1950s and 60s and how it changed dramatically and drastically over the past few decades. You know, so many things have changed, and it was an eye-opener for me to see lounges on aircraft and people getting dressed up as if they were going for a major occasion. If archives are not available, it won't be available to us.
अगर ये कला ना होती तो कैसे जानते हैं हमके पीछे क्या हुआ है?
Absolutely.
और अब तो डिजिटलीकरण हो रहा है सब चीजों का, तो अब तो कई दशकों तक ये चीजें रहेंगी.
जी जी. This is the most important legacy actually that archives can provide, and one which makes them priceless. And the world is facing a challenging transition from analog to digital, like Vinay, you just said that digitalization is happening, and with many documents no longer produced on paper, it's all moved from analog to digital. So there may be a concern about the future of archives. However, given that the activities of archivists are essential to our society, we can be sure that they will not disappear, but rather will adapt to new ways of preserving documents in a digital world.
मैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। पहले नागपुर चलते हैं। नागपुर एम्स अस्पताल में तृतीय पंथियों की देखभाल उपचार केंद्र की शुरुआत हुई है। मध्य भारत में यह पहला सरकारी सेंटर है। आइए सुनते हैं हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स की तर्ज पर नागपुर एम्स ने भी हाल ही में तृतीयक देखभाल के लिए एक उपचार केंद्र शुरू किया है। यहां इन तृतीय पंथियों को स्वतंत्र इलाज मिलेगा और यह मध्य भारत में अपनी तरह का पहला सरकारी केंद्र होगा। तृतीयक देखभाल की समस्याओं और जरूरतों को समझते हुए नागपुर एम्स में स्वतंत्र उपचार केंद्र शुरू किया गया है। इस सेंटर में हर उम्र के मरीजों को हर तरह की इलाज की सुविधा मिलेगी। सेंटर का उद्देश्य इन मरीजों का भीड़ से दूर बिना किसी परेशानी या झिझक के इलाज करना है। लिंग परिवर्तन जैसी सुविधाओं के साथ साथ इस केंद्र में मनोचिकित्सा, इंडोक्रिनोलॉजी, यूरोलॉजी, त्वचा विज्ञान, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ एक ही स्थान पर एकत्रित होकर सेवाएं देंगे। लिंग सर्जरी, मनोचिकित्सा, हार्मोनल थेरेपी और कॉस्मेटिक सर्जरी सहित सभी उपचार यहां उपलब्ध होंगे। इस केंद्र के मिशन को एक सामाजिक संगठन विश्व ममत्व फाउंडेशन द्वारा आगे बढ़ाया गया था। वर्तमान में इस समुदाय का इलाज आम जनता के साथ सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है, इसलिए वे इलाज से बचते हैं। समय के साथ साथ उनकी हालत और गंभीर होती जाती है, इसीलिए ऐसे विशेष उपचार केंद्रों की जरूरत पड़ती है। नागपुर में इस केंद्र के संचालित होने से मध्य भारत के तृतीय पंथी समाज को राहत मिली है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से मैं नम्रता फलके।
Vinay, we all know that the World Environment Day is observed on the 5th of June every year, and the aim is to halt the degradation of ecosystems and restore them to achieve global goals. Let's go over to Imphal and see what has happened. We have a correspondent reporting from there who's going to talk about the observation that was held on the theme land restoration, desertification and drought resilience this year. And in Manipur, the observation was held with organizing the workshop, seminars on the theme along with mass tree plantations. However, one organization that has been working on preservation of ecosystems and biodiversity, especially in river systems, is going to be the topic of this report from J.J. Thokchon.
Water scarcity and water pollution is one of the major environmental problems in the world, and it affects billions of people across the globe. In Manipur, many river systems have been badly affected by the pollution, and it has been posing a big threat to the surrounding environment as well as its biodiversity. However, a voluntary organization called Eco Network, based at Hairok village of Thawal district, is taking all the risks to make their river clean. This organization started undertaking river cleanliness drive in 2023 without any financial assistance from the government or any other local authority. They cleanse the Hairok Wangjing River every Sunday with a group of only 15 members in collaboration with the locals. Not only cleaning the river, they also started collecting garbage from every house so that this garbage does not end up in the river system. Speaking to Akashvani News Parikrama, Ahung Sambam Roshan Kant, a member of Eco Network Hairok, said that the river has become toxic for the people due to the pollution, deforestation at the riverbank, and sand mining. So the Eco Network Hairok was formed to rejuvenate the river and spread awareness on conservation of river to the people, he said.
Eco Network Hairok was formed to tackle the environmental crisis plaguing the Hairok Wangjing River. We had been conducting river rejuvenation and cleanliness campaign under the theme Safe River, Clean Water in collaboration with our local clubs, Mayra 5B and students. Conservation and rejuvenation of river is the responsibility of each and every one of us. We cannot escape the responsibility of tomorrow by invading it today. So we appeal local people, stakeholders, government agency, and everyone to extend their support and cooperation in the river rejuvenation and cleanliness drive to save our river.
The government of India has already launched the Clean India Mission, and the cleaning is a step towards our development. We should participate in the mission and encourage people to stay clean and help in cleaning. Jajet Hoksom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
और अब इम्फाल से चलते हैं शिलांग की ओर, जहां पे चाय के अंतर्राष्ट्रीयकरण को जोर दिया जा रहा है। मेघालय में चाय उत्पादन बढ़ाने और यहां चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें चाय के उत्पादन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और छोटे चाय उत्पादक किसानों को संगठित करने जैसी पहल प्रमुख है।
शिलांग में बागवानी निदेशालय के एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र में मेघालय के छोटे चाय उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने और गुणवत्ता वाली चाय उत्पादन की तकनीक समझाने के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसमें बागवानी विशेषज्ञों ने चाय किसानों को चाय उद्योग में काम आने वाली मशीनरी और उच्च गुणवत्ता की चाय उत्पादन संबंधी जानकारी दी। सत्र में मेघालय कृषि बागवानी निदेशक श्रीमती डीसी साहतून ने मेघालय के छोटे चाय उत्पादकों के लिए बाजार पहुँच बढ़ाने और चाय उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने चाय उत्पादन से समुदाय की उन्नति, सामाजिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ साथ पर्यावरण को मिलने वाले लाभों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चाय उत्पादन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और चाय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मेघालय में 2768 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती होती है। यहाँ वर्ष 1997 में पहली चाय फैक्ट्री स्थापित की गई थी। वर्तमान में मेघालय में 12 छोटी बड़ी चाय फैक्ट्रियां कार्यरत हैं। लगभग 70-80% कृष्ण टेयर और करल चाय का उत्पादन होता है। नेपाल एसटीपीसी के विपणन निदेशक जान टेलर ने इस सत्र में कहा कि माइक्रो और मिनी मशीनरी के इस्तेमाल से मेघालय में चाय का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने अन्य देशों के चाय खरीदारों को मेघालय के चाय उत्पादकों से जोड़ने पर बल दिया। सत्र में नेपाल, दार्जिलिंग, आसाम के चाय विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। सभी विशेषज्ञों का कहना था कि चाय उत्पादकों को संगठित करने, उन्हें गुणवत्ता वाली चाय उत्पादन की जानकारी देने और मशीनरी की तकनीकी जानकारी देने से आने वाले समय में मेघालय राज्य चाय निर्यात में अग्रणी हो सकता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिलांग से परितोष दीक्षित।
Listeners, we'll now take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
The 9th of June is the death anniversary of the brave son of the soil, Bhagwan Birsa Munda. Bhagwan Birsa Munda belonged to District Ranchi. His early education took place in the German mission school at Burj, Chaibasa.
In 1890, he went to Bandgaon, where he came in contact with the zamindars. He left Bandgaon area in the wake of the mounting Munda Sardar's agitation and led a number of rayats of Sirgida to Chaibasa with a petition for the remission of their forest dues. In 1895, Bhagwan Birsa Munda launched his movement against the British.
He declared that the reign of Queen Victoria was over and that the Munda Raj had begun. He gave orders to the Rayats not to pay rents as their lands were free. The Mundas called him Dharti Aba, father of the earth. It was said that he had supernatural powers of turning the bullets into water and that he knew the mantras to drive away evil spirits, to cure the sick, to revive the dead.
With his increasing popularity, the British government got panicky. And in the midnight of the 24th of August, 1895, Bhagwan Birsa Munda was arrested while he was asleep. He was sentenced to 2 years of rigorous imprisonment. After being released from jail, Bhagwan Birsa went with his followers to recover the records of the Munda rites.
By the end of 1899, he reappeared with his legendary magical powers to invigorate his followers, the Birsaites. Bhagwan Birsa Munda's long-time companion, a Munda woman named Sali, was instrumental in mobilizing tribal women into this movement.
Approximately 7,000 men and women assembled around the Christmas of 1899, heralding the Ulgulan, which soon spread to Tamar, Basia and Ranchi. In January 1900, the entire Munda community was up in arms and the revolt rocked the British administration to such an extent that the commissioner felt compelled to declare a reward for the arrest of Birsa.
Subsequently, on the 9th of January 1900, British forces heavily attacked the congregation of the Munda warriors at Sail Rakab Hill near Dombari, killing several Birsa followers, while Bhagwan Birsa Munda escaped to the hills of Singhbhum. The police started an extensive search operation and arrested many of the Birsa followers.
Bhagwan Birsa himself was arrested while asleep at Jamkopai Forest in Chakradharpur on the 3rd of March 1900 and was put into prison. On the 1st of June 1900, the deputy commissioner was told that Bhagwan Birsa had contracted cholera and the jail superintendent, Captain A.R.S. Anderson, started treating Bhagwan Birsa.
Bhagwan Birsa Munda's health improved till the 7th of June, but on the 8th of June, he suffered a relapse and died in the jail on the 9th of June 1900. His dead body is reported to have been cremated near the distillery bridge at Kokar in Ranchi. AIR News salutes the great freedom fighter, Bhagwan Birsa Munda.
We also remember Martyr Hari Kishan, who belonged to Northwest Frontier Province, now in Pakistan. Hari Kishan participated in the non-cooperation movement in 1920s and in the activities of the Naujawan Bharat Sabha and Khudai Khidmatkars. Joining the revolutionary movement thereafter, Hari Kishan took the governor of Punjab to be the symbol of British oppression in India and decided to assassinate him during his scheduled address at the Punjab University convocation on the 23rd of December 1930.
At the appointed hour, he did fire at the governor, who somehow managed to survive with injuries. He was arrested immediately and put on trial and sentenced to death. Hari Kishan was hanged in Miawali jail on the 9th of June 1931. We salute the brave son of the soil.
और श्रोताओं, आप चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां की हलचल। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। आज ही एंटीगा में रात 10:30 बजे ओमन और स्कॉटलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले आज सवेरे वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से हरा दिया। विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को और दक्षिण अफ्रीका ने नेदरलैंड्स को हराया था।
In some more sports news, Carlos Alcaraz of Spain will take on Germany's Alexander Zverev in the men's singles final of French Open tennis in Paris today. While the 21-year-old Alcaraz is seeking his third Grand Slam title, it would be the first for 27-year-old Zverev. Alcaraz has triumphed on the US Open's hard courts in 2022 and Wimbledon's grass courts in 2023, and now he is one victory away from holding a trophy on the red clay at Roland Garros. World number one Iga Świątek of Poland lifted the women's singles title of French Open yesterday. She defeated Italy's Jasmine Paolini 6-2, 6-1. She became only the third woman in the Open era to clinch three straight French Open titles.
और श्रोताओं, अब समय उन हस्तियों के बारे में जानने का जिनकी आज या तो पुण्यतिथि है या जन्मदिवस। सबसे पहले हम याद करते हैं,
लेट्स यू नो पे ट्रिब्यूट्स टू चार्ल्स डिकिन्स, हु वाज बोर्न ऑन दिस, हु एक्चुअली पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 1870, अ प्रोमिनेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड सोशल क्रिटिक, renowned for his vivid characters, intricate plots, and keen observations of Victorian society. Some of his most famous works include A Tale of Two Cities, Great Expectations, Oliver Twist, David Copperfield, and A Christmas Carol. Dickens's novels often highlighted social issues such as poverty, child labor, and class inequality, and his storytelling combined realism, humor, and social commentary. His work continues to be widely read and influential, cementing his legacy as one of the world's greatest writers in the English language.
और अब बात करेंगे हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार असद भोपाली की। असद भोपाली का पूरा नाम असदुल्ला खान था। उन्हें ऐसे गीतकारों में शुमार किया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक लंबा संघर्ष किया। उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया के लिखे गए गीत कबूतर जा जा के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और अब श्रोताओं बात करेंगे राज खोसला की, हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक और निर्माता। उन्हें देवानंद जैसे सफल अभिनेताओं की सफलता के लिए श्रेय दिया जाता है। गुरुदत्त के तहत अपना कैरियर शुरू करने के बाद वो सीआईडी की तरह हिट फिल्में बनाते रहे। वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना और मुख्य फिल्मों में मैं तुलसी तेरे आंगन की थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार मिला। Paying tributes to Vasant Desai, who was born on this day in 1912, a film music composer, most remembered for his score in V. Shantaram films like Janak Janak Payal Baje, Do Aankhe Bara Haath, Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai, Sampurna Ramayan and Ashirwad, and Rishikesh Mukherjee's Guddi. अब बात करेंगे मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्रकार जिनका पूरा जीवन चित्रकला को समर्पित था और जिन्हें प्रगतिशील चित्रकार माना जाता है। मकबूल फिदा हुसैन को सन 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 1973 में उन्हें पद्मभूषण और 1986 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1991 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया। हुसैन को अम्मान स्थित रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली 500 मुस्लिमों की सूची में भी शामिल किया। उन्हें बर्लिन फिल्म समारोह में उनकी फिल्म थ्रू दी आईज ऑफ ए पेंटर के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 1971 में साओ पोलो आर्ट बाइनियल में पिकासो के साथ विशेष आमंत्रित अतिथि थे।
We are saying happy birthday to one of the most phenomenal actors in the English and American cinema, John Depp, the second, born on this day in 1963. Johnny Depp was nominated for 10 Golden Globe Awards, winning one for Best Actor for his performance of the title role in Sweeney Todd. Depp is the third highest grossing actor worldwide, as films featuring Depp have grossed over $3.7 billion at the United States box office and $10 billion worldwide. Let's listen to this beautiful interview with Johnny Depp, which happened a few years ago.
I was pumping gas, most definitely, and printing T-shirts and selling ink pens and, you know, I mean, anything and everything. There was a guy who I worked with many years ago, and we were talking about success and money and all that stuff, and he told me this one thing. He said, you know, money doesn't change anybody. Money reveals them, you know. Same thing with success. And I believe that, you know, wholeheartedly. So I'm still exactly the guy that used to pump gas, you know. I'm still the guy that...
और अब बात करेंगे प्रसिद्ध कवि अजीत शंकर चौधरी की। कवि के रूप में उनकी केंद्रीय उपस्थिति थी। अपने कविता संग्रहों में अकेले कंठ की पुकार, अंकित होने दो, ये फूल नहीं, खरौंदा, हिरनी के लिए, घोंगे और ऊसर के माध्यम से उन्होंने कविता को नया मुहावरा देने के साथ साथ उसे ऐसी लय दी जिसे दैनिक जीवन में भी सुना जा सकता था।
Sending birthday wishes to Sonam Kapoor, who was a film actress. She received a National Film Award and a Filmfare Award, and from 2012 to 2016, she appeared in Forbes India Celebrity 100 list based on her income and popularity. Her acclaimed portrayal of Neerja Bhanot in the 2016 biographical thriller Neerja won her the National Film Award, Special Mention, and a Filmfare Critics Award for Best Actress. Happy birthday to Amisha Patel, an actress and model who predominantly appears in Bollywood films. She rose to prominence by featuring in top-grossing productions Gadar Ek Prem Katha, which became one of the biggest hits in the history of Hindi cinema. But her first film, her acting debut in 2000, was through the film Kaho Na Pyar Hai. Let's listen to this beautiful number from that film.
प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है,
And last and definitely not the least, Anushka Shankar, born on this day in 1981, a British-American sitar player and musician of Indian descent, as well as occasional writer and actor. She performs across multiple genres and styles, classical and contemporary, acoustic and electronic, in addition to releasing 7 solo studio albums, beginning with Anushka 1998. She's also worked alongside a wide variety of musicians, including Karsh Kale on the full-length collaboration Breathing Underwater and her father Ravi Shankar. Let's listen to one of the most beautiful sitar renditions by Anushka Shankar. Thank you.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुझे विनय सक्सेना और मेरे साथी नरेश मावो को कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।